मुश्किल अल्फाज की वजाहत। आयत नंबर 45 में अगर आप देखें तो यहाँ पे इस कालतिल मलाइकातु या मरियम इन अल्लाह युबशिरु की बिकलिमति मिन्हु, तो युबशिरु की क्यों आया? औरत की वजह से। और अगर मर्द होता तो क्या कहा जाता? युबशिरु का। शाबाश। बिकलिमति मिन्हु यानी एक फरमान की खुशखबरी। और कलमा से मुराद क्या है? कल आपने पढ़ा था ईसा अलैहि सलाम। अच्छा, अब उस कलमे की यहाँ वजाहत हो रही है। क्या है? इस्मुहु अल मसीहु ईसा बनु मरियम, कि उसका नाम जो है मसीह ईसा इब्ने मरियम जो है वो होगा। तो मसीह जो है ये खास लफ्ज है, मीम सीन हा, मसा करना। तो इसके जो मानी हैं वो ये बताए जाते हैं कि एक तो ये कि मसीह जो है ये जैसे सियाहत से है चलना फिरना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है उम्र भर सफरों सियाहत में गुजारा, और सफरों सियाहत में गुजार कर ही रिसालत का फरीजा जो है वो अंजाम दिया, मुस्तकिल चलते रहे, तो इसलिए आप मसीह कहलाए। बाज लोग ये कहते हैं कि हेकले सुलेमानी में ये दस्तूर था कि जिस शख्स को वो बुजुर्ग या पाक बाज समझते थे तो उसे काहिन जैतून के तेल से मसा कर देते और इसके जिस्म पर मल देते थे, तेल को मसा करना। इस लिहाज से भी आप मसीह मशहूर हुए कि आप जो थे वो यानी अल्लाह ताला की ने ही कह दिया कि इस्महू अल मसीह, कि आप जो हैं वो मसीह हैं, यानी खास हैं, क्योंकि वो जिसको बुजुर्ग समझते थे काहिन तो उसको वो तेल लगाते थे, तो अल्लाह ने कहा कि इस्महु अल मसीह। और कहते हैं कि मसीह दरअसल आपका लकब है, और ईसा जो है ये आपका नाम है ईसा, और कहते हैं कि यही रूट वर्ड है आयन या और सीन, और ईसा अलैहि सलाम इससे जो है वो मुराद है। और इब्नो मरियम, तो इनकी निस्बत जो है वो हजरत मरियम की तरफ जो है वो की गई है, क्योंकि एक तो ये कि ईसा आपका असल नाम है और दूसरा इब्ने मरियम जो है वो आपकी कुनियत ही नहीं बल्कि आपका नसब भी है, क्यों? आप बिन बाप के पैदा हुए थे इसलिए आपको माँ की तरफ जो है वो मंसूब किया गया, और आपके बिन बाप के होने की ये सबसे बड़ी दलील है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस अंदाज से किसी मर्द और औरत का नसब नहीं बयान किया कि फला बिन फला, लेकिन जो है वो कई जगह पर हमें जो है वो इब्ने मरियम का जिक्र जो है वो मिलता है। तो ये है कि उनका लकब मसीह है और ईसा उनका नाम है और वो बेटे हैं मरियम के, तो हमें जो है ये जिक्र मिलता है। तो पीछे आपने ये बात पढ़ी थी ना कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि इन अल्लाह अस्तफा की व तहारा की वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, के चुन लिया है आपको, बरगजीदा किया है, आप मुंतखब औरतों में से हैं दुनिया की औरतों में। तो अब ये सारी उसकी तफसील जो है बताई जा रही है कि तुझे खुशखबरी दी जा रही है, और ये उसकी भी तफसील है कि लड़का लड़की की तरह जो है वो नहीं होता, वले ज़कर कल उनसा, कि वो हजरत मरियम जिनकी पैदाइश पर उनकी वालदा परेशान थी तो अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी कि लड़का लड़की की तरह नहीं होता, जो काम मैंने लड़की से लेना है वो लड़के से तो नहीं लेना, और आपकी मन्नत तो कबूल हो गई। अब उस लड़की से क्या काम लिया जा रहा है कि उसको बेटे की खुशखबरी दी जा रही है, और बेटा भी वो जो कि बिन बाप के। फिर उसकी अगली खूबी क्या है कि वजीहन, वजीहन जो है ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, वजहून से है वजूह, चेहरों को कहते हैं, और हर चीज का जो अशरफ हिस्सा होता है उसके लिए भी वजीहन बोला जाता है। हर जिस्म का अशरफ हिस्सा चेहरा है ना, इसी से हर चीज का जो बेहतरीन हिस्सा होता है ना उसके लिए बोला जाता है। इसी से विजहतुन है, इसी से जेहत है कि फलां जेहत या फलां तरफ। तो इसका मानी है मुअज्जज, सरदार, बारोब, क्योंकि वजी वो शख्स होता है जिसके रोब और वकार की वजह से कोई शख्स रू दर रू उससे ताना ना दे सके, तो कहते हैं कि यहूद आपको आगे पीछे तो बुरा भला कहते थे, नाउज बिल्ला आप पर इल्जाम लगाते थे माज अल्लाह के आप जो हैं वो वलदुल जिना हैं, नाउज बिल्ला ये बात कहते थे, लेकिन मुंह पर ऐसा करने की कभी उनको जसारत और जुर्रत जो है वो नहीं होती थी, क्योंकि आपके अंदर जो थी वो बड़ी ही वजाहत जो थी वो और बड़ा ही वकार जो है वो पाया जाता था। और बाज़ लोग कहते हैं कि वजी दरअसल उनकी सरदारी की तरफ भी इशारा है कि अजमत और जलाल जो उनके अंदर था। और 12 साल की उम्र में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने पहली बार हेकल में जो तालीम दी, तो इनकी तालीम कम उम्र के बावजूद उसके अंदर इतनी हिकमत थी, इतनी मार्फत थी, कलाम की बलागत और उसमें जजालत थी कि लबो लहजा की अजमत और जलाल का भी ये हाल था कि फकीह जो उनके थे और फरीसी और सरदार काहिन हेकल के तमाम अमला उनका जो है ना हैरान रह गया, दम बखुद रह गया, और एक दूसरे से पूछते फिरते थे ये कौन है। होता है ना जब कभी आप किसी नए बंदे को सुनते हैं तो इंसान कहता है ये कौन है, कहां से आ गया, यानी हम में से नहीं, सीखा भी नहीं, हमारे दरमियान बैठा भी नहीं, तो ये कौन है। तो यानी इस तरह से वो आपस में जो बात करते थे, तो क्यों वो ऐसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्योंकि ये मकाम दिया था कि वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी दुनिया में भी वो जो है वो वजाहत वाले सरदारी वाले शान और शौकत वाले और आखिरत में भी होंगे। वामिनल मुकर्रबीन कुर्ब काफरा बा, तो कुर्बत से है करीबी होना, तो वो करीबी लोगों में से होंगे। इससे मुराद जो है वो क्या है, यानी अल्लाह ताला ने उनको जो मकाम दिया है उसका जिक्र यहां पर जो है वो किया जा रहा है कि ये उनकी खास जो है वो सिफात है। फिर आप देखें कि मुकर्रबीन जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, मतलब तो एक नहीं कई लोग होंगे जो अल्लाह के करीबी में से होंगे, उनमें से ये भी होंगे, तो ये खुदा तो हो भी नहीं सकते ना अगर इन सारी सिफात पर गौर किया जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत तारुफ जो है वो यहाँ करवाया गया है, वयुकल्लिमुन नासा, तो कल्लमा का रूट वर्ड क्या है और इसके मानी क्या है, जख्मी करना, और इसके अलावा जो है ये बात कलाम गुफ्तगू उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। महद और कहल, महद जो है ये गोद को कहते हैं, है ना, जैसे पंगूड़े को भी महत कहते हैं और इसी तरह कब्र को भी महत कहते हैं, और इसके अलावा कहल लफ्ज जो है ये कहते हैं उधेड़पन को, उधेड़पन। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि पुख्ता उम्र, बाज लोग कहते हैं कि इससे मुराद 20 से 50 साल का अरसा है, बाज कहते हैं कि 40 से 60 साल का अरसा जो है वो कहल का अरसा कहलाता है। यानी उस दौर में जो है वो इंसान की सलाहियतें फिर ढलना शुरू होती हैं, फिर इसके बाद बुढ़ापा आता है ना। वैसे तो आपने बुढ़ापे के लिए कई लफ्ज कुरान में पढ़ लिए ना, फारिद भी पढ़ा आपने और ये भी है, उजूज भी है, औरत के लिए वो सिर्फ आता है, हाँ है ना, जोफ जईफ वो भी। तो यहाँ पे क्या है कि महद और कहल, तो महद क्या है कि बच्चा गोद में है, दूध पी रहा है, अभी बात भी नहीं करता, बहुत छोटी उम्र है उसकी, तो महद है या कहल दोनों में वो बात करेंगे। छोटी उम्र में भी इंसान जो है वो कम बात करता है ना, करता ही नहीं है, आगाज होता है तो मुश्किल होता है और जब उसका एंड हो रहा होता है फिर उसके लिए मुश्किल होता है, ले दे के जवानी अहम है ना। तो लेकिन इन दोनों में ये खास अल्लाह ताला ने उनको ये खूबी और औसाफ और मौजदे से जो है वो नवाजा था। और फिर उसके साथ ही जो अहम बात कही वो क्या थी, वमिनस्सालिहीन, कि वो नेक लोगों में से होंगे। तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि लोग उनको बुरा भला ना कहें, वलदुज़्ज़िना या इस तरह की और बातें, अल्लाह ताला की वो कुदरते कामिला से पैदा हुए और वो नेकोकार हैं। ठीक है, फिर आप देखें कि यहाँ पे आयत नंबर 47 में आप देखें तो वलम यमससनी बशर, के किसी ने उनको जो है वो छुआ नहीं। तो जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी मिली कि उनके यहाँ बेटा पैदा होगा, लड़का पैदा होने वाला है, तो वो बहुत परेशान हुई कि किसी मर्द ने मुझे छुआ ही नहीं, मेरे करीब ही नहीं कोई आया, तो मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा हो सकता है। तो ये यमससनी जो है इसका रूट वर्ड है मस, है ना, मीम सीन सीन माने क्या है इसके? हाँ छूना, तो इससे मुराद जो है वो ताल्लुक है। फिर उसके बाद आप आगे चले तो 47 आयत में आप कदा का लफ्ज जो है ये पहले भी पढ़ चुकी हैं, है ना। ये लफ्ज जो है इसके मानी है किसी काम से फारिग होना और फरीकैन के दरमियान झगड़े का आखिरी फैसला चुका देना। सही। फिर इसके बाद जो है आयत 48 है, और आयत 48 में आप पढ़ ही चुकी हैं पहले भी, इसमें कोई ऐसी नई चीज जो है वो नहीं है, है ना। फिर इसके बाद क्या है, आयत नंबर 49 है। 49 में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इसको पढ़ चुकी हैं, कज्जे तुकुम बी आयतिन मिन रब्बिकुम। तो जे तुकुम जो है इसका रूट वर्ड और इसके मानी आप बताएं। हमजा जे तुकुम, जीम हमजा या, तो जीम हमजा जो है वो या है, तो इसका और मानी क्या हुए? बा की वजह से लाना, शाबाश, ये बात ही मैं चाहती थी कि जा आ, है ना। तो उसी से फिर क्या है कि बा की प्रेपोजिशन ने साथ जो है वो लाना के मानी पैदा कर दिए। आगे आ रही है ना बी आयतिन, आयतिन से पहले जो बा आया है, आगे समझ सबको। तो या पहले भी इस तरह का जो है वो पढ़ चुकी है कि जब ये इस तरह से आता है तो मानी के अंदर जो है वो तब्दीली पैदा जो है वो हो जाती है। पहले आपने पढ़ा था के वाइन कुन तुम फी रही बिम मिम्मा नज़लना अला अब्दीना फातू बिसूरतिन मिम मिस्लिही फातू। तो आप वहां आपने पढ़ा था हमजा ता या और उसके साथ बा की प्रेपोजिशन अता आना, और बा आ गया तो लाना। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है वो लाना के मानी पैदा हो गए। वैसे तो है कि जा जाना, तो हमजा साथ आ गया तो फिर लाना। फिर इसी तरह आगे अहम लफ्ज क्या है के तीन आयत नंबर यही 48 में आप आगे चले तो तीन लफ्ज है कि अन्नी अखलकू लकुम मिन तीनी। तीन जो है ये गीली मट्टी को कहते हैं, ऐसी मट्टी जिसमें भूसा ना हो, खा इससे पानी की रतूबत खत्म हो जाए, यानी पानी का जो पानीपन होता है ना गीलापन उसमें खत्म भी हो जाए तो भी सूखे हुए कीचड़ को भी तीन कहेंगे। समझ आई? ऐसी मट्टी जो गीली हो और मगर इसमें भूसा ना हो, बेशक इसका पानी खत्म भी हो जाए, रतूबत इसकी नमी खत्म भी हो जाए तो भी इसके सूखे कीचड़ को भी तीन कहा जाएगा। एक लफ्ज होता है तुराब। तुराब जो है ये खुश्क मट्टी, आम मट्टी, हर तरह की मट्टी के लिए तुराब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है तीन का है हती। तो जो है हती जो है इसका रूट वर्ड है हा या हमजा, हा या हमजा। शक्लो सूरत जो है किसी भी चीज की रफ सी इब्तदाई शक्ल, किसी भी चीज की रफ कैच जो होता है ना उसको कहते हैं। और ये मादी लिहाज से भी और हिस्सी लिहाज से भी दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ना हिस्सी लिहाज से क्या कि जहन में आप एक स्केच बनाते हैं, किसी का भी एक रफ सा स्केच जहन में आ जाता है, और मादी क्या है कि बाकायदा किसी का बनाना कि वो नजर आए, महसूस हो। आपको समझ आ गई इसकी? हाँ या हमजा, हाँ हियत कहते हैं जैसे। अच्छा फिर इसके बाद आप आगे देखें तो वह उब्रेहुल अकमहा। उब्रेहु जो है ये आप जो है वो पढ़ चुकी हैं। उब्रेहु जो है इसके माने क्या है? हाँ इसका मतलब है बरी करना, बारा हमजा, ऐब से पाक करना, ऐब से पाक करना। और अकमहा काफ मीम हा रूट वर्ड है, और ये होता है वो अंधा जो मां के पेट से ही अंधा जो है वो पैदा हो, है ना। और आपने पीछे पढ़ा था ना सुम्मुम बुकमुन उमियुन, तो उमियुन कौन सा अंधा है? आंखों का अंधा। और ऐन मीम हा कौन सा अंधा है? जिसको दिल का अंधा, बसीरत ना हो जिसके पास। वल अब रसा बरस, बा रा स्वाद, फलहरी का मरीज ये बुर्स बर्स, वो बीमारी जिससे जिस्म पर सफेद दाग पड़ जाते हैं। फिर इसके बाद जो है अब आगे चले तो ये लफ्ज अहम है कि वल अबरसा के बाद वह उहिल मऊता बिज़्निल्लाही व उनब्बियुकुम نبی حکم کا روٹ پٹ کیا ہے؟ نون با حمزہ بتانا، بڑی خبر کا بتانا. بڑی خبر کیا ہے؟ بما تاکلون وما تدخرون. تدخرون جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے زال خارا، زال خارا. اب آپ کہیں گے یہ روٹین سے بالکل ہٹ کر ہے، کہ ہونا تو چاہیے تھا کہ دال خارا، لیکن زال خارا روٹ ورڈ ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ ادغام قریب المخرج ہوا ہے، دال اور زال کا مخرج قریب قریب ہے نا، تو مدغم ہو گئے ہیں. زال جو ہے وہ دال میں مدغم ہو گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ادغام قریب المخرج. تو کیا پھر بن گیا؟ ادخرا یدخرو. اور اصل میں یہ کیا تھا؟ ازتخرا یستخرو، اور اس سے بن گیا ادخرا یدخرو. ادغام قریب المخرج. اچھا، اگر آپ یہ ساری بات نہیں بھی یاد رکھنا چاہتے اور آپ پریشان نہ ہو، بس اتنا ہی یاد کر لیں کہ روٹ ورڈ اس کا زال خارا ہے. زال جو ہے وہ تبدیل ہو گئی یہ دال میں، آپ کو لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی لیکن ہے اصل میں یہ زال. ٹھیک ہے، معنی ہے ذخیرہ اندوزی کرنا، مستقبل کے لیے کچھ بچا کر رکھنا. پھر آپ جو ہے وہ آگے چلیں تو یہ تورات، تورات کا روٹ ورڈ تاورا، اور یہ وہ کتاب الہامی کتاب مراد ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ نازل ہوئی. پھر وہی بات ہے وجئتکم بآیت، آیت 50 میں، تو اس سے بھی مراد وہی ہے کہ لایا ہوں. پھر آپ آگے چلیں آیت 52 میں احصہ. احصہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کے بعض حروف ایسے ہیں کہ ایک لیٹر کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے نا. ایک ہے حصہ اور ایک ہے جسہ. حصہ اور جسہ، حصہ جو ہے اس کے معنی ہے بیرونی حالات معلوم کرنے کے لیے جستجو، بیرونی حالات معلوم کرنے کے لیے جستجو. اور آپ کو کچھ پتا ہے کہ آپ نے قرآن میں بیرونی حالات معلوم کرنے کے لیے جستجو کا لفظ جو ہے وہ کہاں پڑا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ گم جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، تو اپنے بیٹوں کو یہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر جو ہے وہ یوسف کی کچھ خبر لاؤ، کچھ پتا کرو. تو اصل میں یہ جو حسیس لفظ ہے، اسی سے حسیس ہے، آواز کو بھی کہتے ہیں آواز. تو مطلب کہیں کوئی بھنک تمہارے کانوں میں پڑ جائے، کسی طرح تمہیں کچھ پتا چل جائے یوسف کا، تو مجھے لا کر اس کی جو ہے وہ خبر دو. حالانکہ ان کے بیٹے اس وقت بڑے پریشان اور حیران تھے اور کہتے تھے کہ مطلب ہمارا باپ جو ہے سٹھیا گیا ہے اور ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ اب یوسف کی خبر جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ لائی جائے، ہے نا. تو یہ سورت یوسف ہے، اس کے اندر آیت 87 ہے کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. کیا کہتے ہیں کہ میرے بیٹے جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ خبر لے کر آؤ کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتے. تو یہاں پہ لفظ ہم نے کیا پڑھا؟ تحسسو. اور یہاں پہ بھی احسہ، محسوس کرنا، کہ انہوں نے جو ہے وہ جیسے بیرونی حالات سے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چیز محسوس کی. دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ جسہ، جین سین سین، یہ جاسوس، جاسوسی، کسی چیز کے اندرونی حالات معلوم کرنا. ایک نقطے کا فرق ہے نا، ایک لیٹر کا فرق ہے نا، وہاں ہا ہے یہاں پہ جیم ہے. اور جسہ اندرونی حالات معلوم کرنا اور حصہ بیرونی حالات معلوم کرنا، سمجھ آ گئی بات کی؟ تو جو حصہ ہے وہ عام طور پہ اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور جسہ جو ہے وہ برے معنی میں، جاسوسی، جاسوس. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انصاری، انصاری کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ پھر آگے ہے حواریونا. حواریونا اس کا روٹ ورڈ ہا و را ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات پتا چلتی ہے کہ حواری جو ہے یا ہور جو ہے یہ لغت میں سفیدی کے لیے آتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کے دل کے اندر بڑی اخلاص تھا، ان کے اندر صفائی قلب تھی، تو اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے. और बास कहते हैं कि उनकी उनके कपड़े बड़े सफेद थे, इसलिए उनको हवारी कहा जाता है। और इसके अलावा कहते हैं कि जब उन्होंने दावत दी ना, तो दो धोबियों के पास गए, दो धोबियों के पास गए और उनको कहा कि तुम कपड़ों को क्या साफ करते हो, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि दिलों को भी साफ किया जाता है। तो वो हवारी कहलाए। यानी ये भी हो सकता है कि जैसे उनकी पाकीज़ी नफ्स की वजह से वो हवारी कहलाए, कपड़े धोने की वजह से वो हवारी कहलाए, मतलब पाक साफ नेक साफ सुथरे दिल साफ वाले कपड़े साफ वाले हर तरह से साफ, जाहिरी भी और बातरे भी, हवारी। फिर इसके बाद जो है अगर आप आगे चले तो आयत नंबर 53 में तो कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, सही बात है। फिर इसके बाद आयत नंबर 54 है, मकरू व मकर व मकर अल्लाह, मकर नीम का अफरा। तो मकर जो है ये इंतहाई खुफिया और लतीफ तदबीर को कहते हैं। ये अच्छे मानी में भी इस्तेमाल होता है और बुरे मानी में भी इस्तेमाल होता है, खुफिया तदबीर के लिए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई तदबीर करना उसके लिए भी इस्तेमाल होता है ना। तो खुफिया तदबीर बाज हालात में किसी का मकर तोड़ने के लिए होती है और बाज औकात वैसे ही मकर करने के लिए होती है ना। तो फरेब धोखा ये सारे मानी इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जो है अगली अहम बात क्या है यहाँ पे, कि इस कॉल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफी का आयत 55 जो है इसमें मुतवफी का लफ्ज है। मुतवफी का इसके मानी क्या है, इसका रूट वर्ड क्या है? शाबाश, वफा या। और ये लफ्ज अपने हकीकी और असली मानी में जो है वो इस्तेमाल हुआ है, पूरा पूरा ले लेना, जिस्म और रूह समेत उठाना, जिस्म और रूह समेत उठाना, पूरा पूरा ले लेना, जिस्म और रूह समेत उठा लेना, वफा करना जैसे किसी से। फिर इसके बाद जो है वह राफियों का इलैया व मुतवाहिरू का, तो राफिया का राफाएन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बुलंदी के लिए, और वह मुतवाहिरू का तोहारा, ये किसके लिए, पाकीजगी और तहारत के लिए। फिर इसके बाद जो है आप इत्तबाऊ का तो आप पढ़ी चुकी हैं, तबा का मतलब होता है अतात करना, और तौन व करहन, ये बात याद रखें कि तौन व करहन, तौन जो है वो खुशी से अतात की जाती है, करहन जो पसंद ना हो, और इत्तबा में आम अतात शामिल है ना, वैसे अतात करना कहना मानना। फिर इसके बाद जो है के आयत नंबर 55 मुकम्मल होती है। यहाँ पे आपको कोई मुश्किल लफ्ज़ तो नजर नहीं आ रहा ना, मुश्किल लफ्ज़ तो नजर नहीं आ रहा ना। फिर उसके बाद आप आयत 56 पर आए तो फाउ अज़्ज़बहुम अज़्ज़बा, इसका रूट वर्ड क्या है, ऐन ज़ालबा, इसके मानी है अजाब देना सजा देना, तो यहाँ पे चूंकि शद भी है तो सख्त सजा की तरफ इशारा है। फिर आप आयत 57 पे आए फिर वहां पे आता है फायुवफ़ीहिम, फिर वही रूट वर्ड है वफा या पूरा पूरा देना, यानी वफा करना लेना देना सब चीजों में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे तुराब लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मट्टी का, मट्टी के लिए 59, 59 में क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तुराब, और किसके लिए आता है, मट्टी के लिए, ये खुश्क मट्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आम मट्टी, खुश्क मट्टी हर तरह की मट्टी। और पीछे तीन लफ्ज पड़ा था वो गीली मट्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है आगे चलें, ताराबा। अच्छा फिर इसके बाद है 60 लफ्ज आयत, इसमें मुमतरीन लफ्ज है, मीम राया शाबाश, इसके मानी होते हैं किसी हकीकत को शक की निगाह से देखना, किसी हकीकत को शक की निगाह से देखना। मिरिया बिया पड़ा होगा, हो सकता है आपने, मिरिया, मुसल्लमा बात में शक करना, इमतरा यमतरी। फिर है हाजा का, तो हा जीम जीम हुज्जतबाजी बहस और तकरार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद जो है तालो, ये आयत नंबर 61 में आपको नजर आ रहा है तालो, अब साथ साथ हाईलाइट भी करते जाए क्योंकि अब हम आयतों की बजाय खास मुश्किल अल्फाज जो है वो देख रहे हैं, ठीक है ना। तालो तो ये है इसके मानी क्या हैं? बुलंद मकसद के लिए बुलाना, आम बुलाना नहीं, किसी बुलंद मकसद के लिए जो है वो बुलाना किसी को। जैसे कहते हैं लेट्स गो, हम कहते हैं तो ताल आओ। हाँ, इसका रूट वर्ड जो है वो क्या है?
आई लाम।
आयन लाम। इसको देख लेते हैं, तो इसका रूट वर्ड जो है वो आयन लाम वॉई है। इसके मानी है बुलंद होना, सर उठाना, और इसी से ताल है, इसी से ताला है, बुलंद होना, इसी से इस ताला है गालिबाना। तो तालो जैसे बुलंद मकसद की तरफ आओ। नदउ, हम बुलाते हैं, तो नदउ का रूट वर्ड क्या है? दाल ऐन वो, है ना, दुआ करना, बुलाना। फिर इसके बाद आप आगे चलें तो नबतहिल, 61 आयत में नबतहिल लफ्ज हमें मिल रहा है। नबतहिल जो है बाहालाम, बाहालाम, और इसके मानी है आजी और इनकसारी से जो है ना गिड़गिड़ाना। बद्दुआ करना, पुकारना। जी, ये लफ्ज जैसे बददुआ के लिए वैसे तो लाना लफ्ज भी है, लानत करना। फिर है बायदा या बाउदा, ये भी हिलाक होने के लिए है। फिर सोहका, सोहकन, ये भी किसी को जैसे पीस देना, कपड़े का पुराना होना, बददुआ का जुमला है। इसी तरह बहला जो है इसके मानी है कि किसी को इसकी राय और इरादे में आजाद छोड़ देना, दुआ में पूरी आजादी और आजजी से दुआ करना। ये जो आयत है इसको आयते मुबाहला कहते हैं। आयते मुबाहला यानी इसमें अल्लाह की लानत का जिक्र है, इसीलिए मुबाहला का लफ्ज एक दूसरे पर लानत भेजने के मानों में मशहूर हो गया। गोया इसका इस्तेमाल भी बुरे मफहूम में होता है। इत्तेहाल क्या हुआ? फरीकैन का एक दूसरे पर लानत के लिए मुकम्मल आजादी से दुआ और इल्तजा करना, यानी आजी और इंकसारी से। तो यहाँ पे सुम्मा नबतहिल पर नज अल्लानता, तो नबतहिल में भी बद्दुआ है और लानत आगे फिर वो लफ्ज है, तो और ज्यादा बुराई के मानी में पाया जाता है। तो बाकी आगे तो कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जो आपने ना पढ़ा हुआ हो, सारे लफ्ज जो हैं वो आप पढ़ चुकी हैं।
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بما تعملون